दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। एरिक भाई, ओम शांति प्यारी मोहिनी बहन, दृष्टि से सृष्टि में आपका स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ब्राह्मण परिवार से बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ पाई। मोहिनी बहन, ओम शांति, शुक्रिया। एरिक भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ स्वर्णिम युग में जाना चाहते हैं। बाबा ने वादा किया है कि हम सब एक साथ जाएंगे और सारा चक्र साथ रहेंगे, और निसंदेह हमें उसका इंतजार भी है। और ये सारा कार्यक्रम ही अद्भुत है। हम स्वर्णिम युग के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन कर रहे हैं। हम स्वर्णिम युग कहते हैं तो आपके सामने विशेष कौन सी स्मृतियां, विशेष अनुभव आपके सामने आते हैं जो कि उस स्वर्णिम युग की स्थिति को पुनः निर्माण करने के लिए लाभदायी हैं? कौन से वे विशेष अनुभव हैं जिनको आप बार बार स्मृति में लाना चाहेंगे? मोहिनी बहन, ऐसे तो बहुत ही सुंदर विशेषताएं हैं जो अंतर्मन पर अंकित हैं, लेकिन दो हैं जो मेरे सामने अभी आ रही हैं। एक है संपूर्णता का अनुभव। इसका अर्थ है कोई खालीपन नहीं, कोई गहरा काला कोना नहीं बचा, पूरी तरह से खिला हुआ, चमकता हुआ अंतर्मन पूरी तरह से उन्नत है, विपुलता से भरपूर है, और पवित्रता के कारण वह संपूर्णता का अनुभव है। क्योंकि स्वर्णिम युग में किसी को किसी कमी का एहसास नहीं होगा। कोई वस्तु चाहिए या कोई डर या चिंता या व्यर्थ चिंतन, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ अनुपस्थित होगा। क्योंकि वहाँ की ऊर्जा सतो होती है, क्योंकि जब ऊर्जा सतो होती है और आत्मा में भरपूरता होती है तो इसमें बहुत सुंदर भावनाएं होती हैं। एक बहुत सुंदर स्वर्णिम युग की विशेषता जो मुझे उस भरपूरता में महसूस होती है वह है प्रेम। वहाँ इतना अधिक प्रेम होता है और बहुत प्राकृतिक तरीके से प्रेम पूर्ण व्यवहार, प्रेम में दृष्टि, स्नेही और एक दूसरे का ध्यान रखने वाला स्वभाव। तो जब मैं उस भरपूरता का अनुभव करती हूँ तो संपूर्ण शांति, संपूर्ण आशा का अनुभव होता है। विशेष तौर पर आशा या हिम्मत, इन सब विशेषताओं का अनुभव होता है जब हम अंदर से भरपूरता का अनुभव करते हैं। और वह परिपूर्णता सतो प्रधान अवस्था है जो कि हमें और हमारे संबंधों को प्रकट करेगी। हम प्रकृति को बहुत प्रेम से देखेंगे। हम सब कुछ बहुत प्रेम से करते हैं। मेरे अनुसार वहाँ स्वर्णिम युग में यह अनुभव होना है। एरिक भाई, समय समय पर बाबा हमें ड्रिल करने को कहते हैं, जैसे परम धाम जाना, स्वर्णिम युग में जाना, फिर ब्राह्मण। जब बाबा हमें स्वर्णिम युग में ले जाते हैं तो जो अभी आपने वर्णन किया परिपूर्णता और प्रेम का, तो इसके अलावा आपके मन में क्या कल्पना होती है ताकि देवताओं की सतो प्रधान अवस्था सक्रिय हो जाए? कौन सी वे बातें हैं जो सतो प्रधान अवस्था को जागृत या सक्रिय करेंगी? मोहिनी बहन, प्रकृति के साथ बहुत बहुत गहरा समन्वय, क्योंकि जब आप चारों ओर देखेंगे तो एक समन्वय की भावना होती है, संपूर्ण समन्वय। क्योंकि जब संपूर्ण समन्वय होता है तो इसका अर्थ है कि सभी तत्व, वायु, जल, अग्नि, आकाश, सब कुछ संपन्नता में होगा और जीवन को सहारा देने वाले होंगे। यह प्रकृति के सानिध्य में होने का एहसास होगा। जब बाबा कहते हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर होगा वहाँ सदा बाहरी मौसम होगा, तो पंछियों की चहचहाट, मोरों का नाच और सुंदर बगीचे, हमारी स्वयं की जिंदगी भी बहुत समरसतापूर्ण होगी। जैसा यहाँ हमारी दिनचर्या होती है और हर बात की सीमा रेखा या अंतिम तिथि होती है, लेकिन स्वर्णिम युग में सब कुछ सहज होगा। हम सुबह पंछियों के गाने के सुंदर संगीत से उठेंगे और जब हम आंखें खोलेंगे तो सूर्य उदय होगा और हम सुबह घूमेंगे, प्रकृति में सुंदर फूल होंगे, प्रकृति में सब कुछ बहुत सुंदर होगा। कल्पना कीजिए, ना तो बहुत गर्म होगा ना बहुत ठंडा होगा, लेकिन बहुत सुंदर मौसम होगा और हमारे आसपास हर वस्तु की आपस में समरसता होगी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गीत है, आंतरिक गीत है जो प्रेम और समन्वय से बज रहा है। जिस सुंदरता के बारे में मैं सोच रही हूँ, जो मैं अनुभव करती हूँ, यह आपके पास कभी कभी समय होता है, लेकिन हम सुंदरता को निहारते नहीं हैं, लेकिन स्वर्णिम युग में हमारे पास आसपास पैदल करने के लिए, प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करने के लिए, सुंदरता को सराहने के लिए पर्याप्त समय होगा। यही बात मेरे मन में आती है। फलों, फूलों, बगीचों की सुंदरता और लोग चल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, उनकी पारस्परिक बातचीत होगी, हमें बहुत सुंदर दिव्यता की महसूसता होगी। रॉयल्टी भी एक विशेषता है जो मेरे मन में आती है, सिर्फ सुंदरता नहीं लेकिन सब कुछ बहुत रॉयल होगा, बहुत शोभायमान होगा, बहुत गरिमा होगी, एक दूसरे के प्रति, प्रकृति के प्रति बहुत आदर होगा। तो ये विशेषताएं हमारे जीवन में बहुत प्रत्यक्ष होंगी, यही मैं सोचती हूँ। एरिक भाई, यह बहुत सुंदर बात है, बहुत दिलचस्प है कि हम सुंदरता, रॉयल्टी और गरिमा को समझ सकते हैं। आज इनको तुलनात्मक तरीके से समझते हैं। कुछ सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ सब कुछ सुंदर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यह सुंदर है उसकी तुलना में जो इतना सुंदर नहीं है। आपने सोचा है कि स्वर्णिम युग में हम सुंदरता का अनुभव कैसे करते हैं, जब हमारे पास तुलना करने को कुछ है ही नहीं। हम यह नहीं कहेंगे कि यह कितना सुंदर है, क्योंकि यह स्वर्णिम युग है। कलयुग में कितना खराब था, अब अच्छा है, वहाँ इस प्रकार का कोई संदर्भ नहीं होगा, तो हम सुंदरता का अनुभव कैसे करेंगे? मोहिनी बहन, मुझे लगता है कि सुंदरता का अनुभव करने के लिए परस्पर तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का आंतरिक गुण है सुंदरता के लिए प्रेम, और क्योंकि हमारी सहज विशेषताएं वहां मौजूद हैं, तो वह बहुत अलग अनुभव होगा। देखो, जब आप तुलना करते हो तो आपके पास दो तरफ होते हैं, यह सुंदर है, यह कुरूप है, लेकिन वहां केवल सुंदरता होगी और मन की वही अवस्था उत्पन्न करने की मैं कोशिश करती हूँ जहाँ कोई तुलना नहीं। जैसे अगर मुझे विश्वास है तो भय नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक तरफ चाहिए, एक ही अनुभव चाहिए, वही मुझे संपूर्णता की स्थिति का अनुभव होता है। जब आप संपूर्णता की स्थिति की ओर जाते हैं तो आप उसमें सिलसिलेवार जाना चाहते हैं, आप तुलना या विषमता नहीं चाहते। यहाँ भी मुझे लगता है जो विशेषता हम सब में ही होनी चाहिए वह है केवल सुंदरता को ही देखना है, केवल सुंदर कर्म ही करने हैं, सुंदर बातें ही बोलनी हैं, क्योंकि अभी हम उन संस्कारों से स्वयं को भर रहे हैं, क्योंकि स्वर्णिम युग में यह केवल प्राकृतिक ही नहीं होगा बल्कि सुंदरता की सराहना करना यह हमारी आंतरिक विशेषता बन जाएगी। तो उस तुलना का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि वह आंतरिक विशेषता होगी तो हर बात जो आप देखेंगे, जानवर, पंछी, फल, सब सुंदर नजर आएंगे। आज बहुत से जीवाणु होते हैं, तो मुझे लगता है कि सुंदरता की सराहना करने के लिए तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज बहुत बहुत स्वस्थ होगी। मैं सोचती हूँ कि हमारी संगम युग की आंतरिक विशेषताएं हमें स्वर्णिम युग में अनुभव करने में सहायक होती हैं। कम से कम मैं स्वयं के लिए वह यहाँ निर्माण करने का प्रयत्न करती हूँ। मेरी चेतना में मैं प्रत्येक वस्तु को सुंदर देखने का प्रयास करती हूँ, अर्थात अगर कुछ सुंदर नहीं है तो मैं उसको समाप्त कर देती हूँ। वही देखती हूँ जो सुंदर है, लोग, प्रकृति। तो सुंदरता देखने के संस्कार यही बनाने हैं। एरिक भाई, यह बहुत दिलचस्प है, किस प्रकार आपने स्वर्णिम युग में सुंदरता देखने को कैसे जोड़ा है। हमें उस स्मृति को निरंतर अपने भीतर बढ़ाना है। यह बहुत आकर्षक है कि स्वर्णिम युग की सुंदरता को देखना, फिर वापस इस दुनिया में लौट आना, और जैसे कि स्वर्णिम युग की विशेषताओं से इस वर्तमान जीवन की विशेषताओं को विकसित करने की हम प्रेरणा लेते हैं। मुझे लगता है कि स्वर्णिम युग निर्माण करने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। मोहिनी बहन, सबसे पहले तो उस स्वर्णिम युग का अनुभव हमें अभी ही करना है, तब फिर मैं उसे स्वर्णिम युग में जोड़ूंगी। तो आज मैं सोच रही थी, अगर एक भी विचार लाभदायक नहीं है या साधारण है, तो वह वाइब्रेशन का पूरी तरह से बदलाव कर देता है। तो मैं सोचती हूँ कि उस शांति शक्ति के प्रकंपनों में रहूं, तो कम से कम मेरे लिए मैं उस प्रकार की अवस्था पर अधिक ध्यान दे रही हूँ, ताकि जब आत्मा शरीर छोड़े तो वह उस अनुभव में हो, ना कि सिर्फ सूक्ष्म वतन के अनुभवों में, बल्कि स्वर्णिम युग भी। जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की फोटो देखते थे और कहते थे, कल मैं यह बनूंगा, तो मैं ब्रह्मा बाबा के चेहरे में एक बच्चे का चेहरा देखती थी। वे किस प्रकार बच्चे की तरह मुस्कुराते थे, एक बूढ़े मानव की तरह नहीं थे, वो मासूमियत थी, एक बच्चे की तरह चमक थी। मैं ये सोचती थी कि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, कल मैं यह बनूंगा, कल मैं यह बनूंगा। केवल परिधान की बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत खुशनुमा चेहरा, उमंग उत्साह, मासूमियत और विवेक, उनके चेहरे पर ये विशेषताएं प्रत्यक्ष थी। जब हम उनको देखते थे तो उनके चेहरे पर यह खास ईश्वरीय नशा रहता था कि आज मैं ईश्वरीय संतान हूँ और कल मैं देवताओं की संतान बनूंगा। तो हमें वह संस्कार कि कल हम क्या बनेंगे, वे संस्कार अभी से स्वयं में भरने होंगे, ताकि आज मैं अपने भीतर बिठा सकूं कि कल मैं क्या बनूंगा। बाबा ने छोटे बच्चे कृष्ण के साथ स्वयं को जोड़ा।
So that today I'm able to inculcate what I will be tomorrow. So Baba connected very much with little baby Krishna with that way.
Eric bhai, मुझे आपसे पूछना है कि आपका स्वर्णिम युग के साथ क्या संबंध है, क्योंकि आज जिस प्रकार आप उस युग के बारे में सोच रहे हो, लेकिन 60 वर्ष पूर्व आप किसी दूसरे ढंग से सोचते होंगे। तो इतने वर्षों में स्वर्णिम युग की आपकी समझ में और आपके संबंध में क्या बदलाव आया है। मोहिनी बहन, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे समस्त ब्राह्मण परिवार या जिस ईश्वरीय परिवार के साथ मैं रहती हूँ, कि वहाँ एकता होगी, समरसता होगी, आदर होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हम स्वर्णिम युग में होंगे वह अभी नहीं हो सकते, तो स्वर्णिम युग को भूल जाओ। हमेशा ही मेरी अपेक्षाएं और दूसरों के साथ संबंधों की मेरी समझ यही है कि अगर हम स्वर्णिम युग का अनुभव अभी नहीं कर रहे तो यह केवल हमारा विश्वास है कि स्वर्णिम युग आएगा, क्योंकि इस अनुभव का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो हमेशा शुभ भावना रखती हूँ, मुझे कभी भी किसी आत्मा के साथ मुश्किल नहीं होती, चाहे वे कैसे भी हों। मेरे मन में तत्काल बहुत प्रेम उमड़ कर आता है, हम ऐसे बनेंगे और हमें ऐसा बनना चाहिए। बेशक कुछ मुश्किलें और संस्कार होते हैं, लेकिन मेरे हृदय में मैं सदा प्रेम पूर्ण और समरसता पूर्ण व्यवहार रखती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि स्वर्णिम युग का अनुभव अभी करना है। हम जानते हैं कि यह संगम युग है, ईश्वरीय राजधानी है, ईश्वरीय परिवार है। तो अब यह परिवार है, बाद में यह राजधानी बन जाएगी, लेकिन हमारे छोटे स्थानों पर यह अनुभव होना अति आवश्यक है। कम से कम मेरे लिए वह स्वर्णिम युग का यही निर्माण करना है, ताकि जब हम स्वर्णिम युग में जाएं, तो वह स्वर्णिम युग में होने का वह अनुभव और भावना अभी हमारी दृष्टि से, व्यवहार से, पारस्परिक व्यवहार से प्रकट हो। यही मुझे महसूस होता है।
Through our drishti, through our behavior, interaction. That's how I always feel.
Eric bhai, आपका शुरुआती दिनों का स्वर्णिम युग का अनुभव कैसा था? हम में से बहुतों के लिए वह केवल चित्रात्मक है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, पंछी होंगे, आम होंगे। मुझे ध्यान है कि शुरुआत में केवल भौतिक स्तर पर ही सोचते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आपके लिए शुरुआत में कैसा था? मोहिनी बहन, असल में जिस बात ने मुझे आकर्षित किया वह ये सब सुंदर चित्र, सुंदर प्रकृति नहीं थी, और जिस बात ने मुझे हमेशा से ही आकर्षित किया है वह आंतरिक स्थिति, संबंध। शुरुआत में भी मेरे लिए भावनाएं ही महत्वपूर्ण थी कि कैसे मैं उठूंगी, सत्युग में भावनाएं कैसी होंगी, मेरी स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति कैसी भावनाएं होंगी, प्रकृति के प्रति कैसी भावना होगी। मेरे लिए तो यही महत्वपूर्ण है। अभी भी जब बाबा हीरे से सजे हुए सोने के महलों की बातें करते हैं तो मुझे महसूस होता है ये सोना, धातु आदि जब विनाश होता है तो सब कुछ धूल का हिस्सा बन जाता है। धूल में ही सोना होगा, धूल में ही चांदी होगी। ऐसा नहीं कि आप सोने के महलों में कैसे रहेंगे, क्योंकि एक बार मैं मेक्सिको में थी तो उन्होंने मुझे एक बहुत अमीर व्यक्ति के कमरे में ठहराया और हर वस्तु मैपल गोल्ड से रंगी हुई थी, मेज, कुर्सी आदि सब कुछ। और मैंने कहा, क्या आप कुछ पौधे ला सकते हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत नीरस प्रतीत हुआ। तो स्वर्णिम युग में सब कुछ प्राकृतिक होगा, सोना भी धूल का ही हिस्सा होगा, ईंटों में सभी धातु होंगे, जल में सभी खनिज पदार्थ होंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने इन तत्वों से सब कुछ समाप्त कर दिया है, तो सोना अलग है, चांदी अलग है। तो जब हम समुद्र की लहरों के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार वे अपने साथ धूल सोना ले आती हैं, जब वे किसी टापू की खोज करते हैं, तो आज के संसार में यह सब बातें बहुत सामान्य हैं। मेरे लिए हमेशा रहता है हर बात प्रकृति का हिस्सा ही होगी। बाबा जब सोने के महलों का विवरण करते हैं तो मेरे लिए यह समझ है कि सोना धूल का ही तो हिस्सा होगा। तो कल्पना करें वे ईंटें कितनी सुंदर होंगी। और मूल रूप से जिस बात ने मुझे स्वर्णिम युग की ओर आकर्षित किया वह है समरसता, समन्वयता, सुंदरता। हर कोई हर समय अच्छे मूड में, हमेशा खुशनुमा।
And but basically what attracted me for Golden Age is, as I said, harmony, it's beauty, and everyone in good mood all the time, always cheerful.
That would be a big change.
Eric भाई, मुझे बहुत पसंद आया कैसे आपने सोने की धूल, गोल्ड डस्ट के बारे में बात की। बहुतों के खासतौर पर पश्चिमी लोगों के स्वर्णिम युग के बारे में तकनीकी सवाल होते हैं। हम शुरुआत के ज्ञान के दिनों में पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं, फिर बाद में हम में से कुछ सोचने लगते हैं कि वास्तव में ऐसा कैसे होगा। मुझे खुशी है कि आपने इस पॉइंट को उठाया है। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि मैंने ब्रजमोहन भाई साहब से स्वर्णिम युग की तकनीकी के कुछ पेचीदा सवाल पूछे हैं और मुझे मालूम था उनके उत्तर सुनना बहुत रोमांचक होगा, और निसंदेह उन्होंने बहुत युक्ति से जवाब दिया और कहा कि शायद सार्वजनिक रूप से इन बातों का विवरण ठीक नहीं रहेगा कि वास्तव में स्वर्णिम युग में सब कुछ कैसे कैसे होगा, प्रजनन कैसे होगा। शायद उनके पास जवाब हो, लेकिन हो सकता है लोग समझ ना पाए और इससे और ही उलझन पैदा होगी। तो मुझे लगा कि वे सवाल पूछना लाभप्रद था, क्योंकि बहुतों के मन में ये सवाल है। लेकिन अगर हम इस स्वर्णिम युग के इस भौतिक आयाम से थोड़ा दूर हों, तो आपकी नजर में कौन से ऐसे योग्य विचार या मुद्दे हैं जिन पर हम वास्तव में हमें चिंतन करना चाहिए, जो हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर और परिवार के लिए बहुत योग्य हैं, आवश्यक हैं, जो हमारी उन्नति के लिए सहायक होंगे? तो कौन से वे बातें हैं जिन पर हमें एकाग्रचित होना चाहिए? मोहिनी बहन, मुझे लगता है कि एक बात जो महत्वपूर्ण है वह है हमारी स्वयं के प्रति दृष्टि। सबसे पहले मुझे स्वयं को इस पूज्य स्वरूप में देखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि ताज और गहनों के साथ स्वयं को देखें, लेकिन पवित्रता, सादगी की भावनाओं को महसूस करना है तो पहले ये स्वयं के प्रति होनी चाहिए, फिर हम हरेक को उस पवित्रता और शुचिता के साथ देखते हैं। मेरे हिसाब से स्वर्णिम युग में यही मुख्य विशेषताएं हैं, पवित्रता, शुचिता, प्रेम, शांति और खुशी। लेकिन जो कुछ भी हम करेंगे, हर बात एक अच्छी रीति से होगी, लेकिन वह जीवन का हिस्सा होगा। वहाँ कोई अलग से व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन हमारे जीवन बहुत बहुत प्राकृतिक तरीके से संरचित होंगे। अर्थात हम बहुत सहज रीति से जागेंगे और एक बड़े परिवार के रूप में या जितने भी लोग आसपास होंगे सब मिलकर नाश्ता करेंगे। यह एक जीवन है जहाँ काम और आनंद साथ साथ नैसर्गिक ढंग से होता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाने के लिए हमें छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, लेकिन वह सदा ही छुट्टियों का अनुभव होगा। यही बात मेरे मन में अभी आती है।
Not that we have to take vacations and visit some places, but there will be natural feeling of holidays and holy days together. That's what coming to my mind.
That gives us the taste of going there. And
Eric भाई, एक सवाल आपसे पूछने के लिए स्वयं को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप लंबे समय तक संदेशी रही हैं और हम जानते हैं कि आपको सूक्ष्म लोक में अद्भुत अनुभव हुए होंगे। क्या आप शुरुआती दिनों में स्वर्णिम युग के बहुत अनुभव करते थे? शुरुआती दिनों में आपके क्या अनुभव रहे? मोहिनी बहन, हाँ बहुत अनुभव थे, लेकिन मालूम नहीं था कि वे स्वर्णिम युग के अनुभव हैं। लेकिन हाँ, हम बहुत सुंदर पंछी, सुंदर बगीचे, सुंदर फल देखते थे। मूलतः हमें ये अनुभव होते थे, कम से कम मैं सूक्ष्म लोक में देखती थी। लेकिन सबसे रोचक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वह था श्री कृष्ण का दृश्य। मेरे लिए वह बहुत दिलचस्प था। एक मनुष्य की सुंदरता और दिव्यता जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया, और उसके बाद बस वही भौतिक आकर्षण था। इसके अलावा कोई भी भौतिक बात मुझे आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन उस मनुष्य में जो दिव्यता थी, हाँ मैं बहुत सी बातें देखती थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले विवरण दिया, बगीचे, फल आदि। एरिक भाई, आपके अनुसार हम सब में किस एक बात की कमी है जो स्वर्णिम युग को करीब लाने में सहायक होगी? बाबा ने बहुत बार हमें कहा है, समय आपका इंतजार कर रहा है, आपके सिवाय सब कुछ तैयार है। जब हम संसार की ओर देखते हैं, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत अराजकता है। हमारी इच्छा है कि संसार परिवर्तित हो जाए। आपके अनुसार क्या करना चाहिए ताकि थोड़ा और तीव्र गति से वह करीब आ जाए? मोहिनी बहन, मेरे हिसाब से हमें आध्यात्मिक खुशी क्षमा करना, खासकर इस समय के इस दौर में। निसंदेह आज का संसार बहुत दूर है, यह कलयुग की हद है, और संसार में इतनी समस्याएं हैं, इतनी हिंसा है, तो मुझे लगता है कि घनिष्ठता, एकता, समरसता, प्रेम, शांति की भावनाओं को अनुभव करना अति आवश्यक है। हमें ये संदेश सबके साथ बांटते रहना है, ताकि हम सभी एक साथ समरसता में रह सके, एक साथ खुशी और शांति में रह सके। यही सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर निसंदेह पवित्रता भी है। एरिक भाई, तो आप कह रहे हैं कि उस स्वर्णिम युग की अवस्था को अभी निर्माण करने पर हमें सामूहिक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मोहिनी बहन, बिल्कुल, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्थान की, चाहे हमारे घर, सेवा स्थान, उनमें सादगी, प्रचुरता, उदारता, आपस में बांटने की, एक दूसरे का ख्याल करने की भावना का अनुभव होना चाहिए। ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां प्रचुरता है परंतु व्यर्थता नहीं है, समृद्धि है लेकिन यह डर नहीं कि भविष्य में क्या होगा, यह संपूर्ण विश्वास, इसी संपूर्ण विश्वास के साथ व्यवहार में आना है, ताकि प्रकृति सहयोग दे। अगर हमें विश्वास है तो प्रत्येक मनुष्य हमें सहयोग देगा। एरिक भाई, मेरे आखिरी सवाल से पहले, जिसमें हम अनुभव की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, विनाश होगा, सब कुछ अस्त व्यस्त होगा, जैसे बाबा ने कहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध होंगे, और क्या आप कभी कभी सोचते हो कि ये सब कुछ आखिर कैसे होगा इस पृथ्वी पर? क्या प्रक्रिया होगी? क्या कभी इस बारे में आप सोचते हो? मोहिनी बहन, बड़े बड़े तूफानों के तुरंत बाद मैं कई स्थानों पर गई हूँ। मैंने देखा है कि धरती पर वृक्ष पड़े हुए हैं, छतें टपक रही हैं, लेकिन तूफान के बाद एक तरह की शांति भी मैं पाती हूँ। ये बहुत शांत होता है। कुछ अलग प्रकार की अच्छी भावनाएं थी। ये वे भावना नहीं थी कि ये सब क्या है। मैंने महसूस किया कि शायद अंत में जब सब कुछ होगा, एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होगा। उस शांति की अवस्था से सफाई आरंभ होगी और नई दुनिया का निर्माण आरंभ होगा। लेकिन पहले जो अनुभव है वह है शांति का अनुभव। हम कई बार अनुभव करते हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, कि कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वहाँ डेड साइलेंस हो जाती है, गहरी शांति होती है, कोई दुख नहीं होता, कोई रोता नहीं है। यह हमने ब्रह्मा बाबा के साथ भी अनुभव किया है। कईयों ने शरीर छोड़ा और मुझे बहुत बहुत गहरी शांति का अनुभव हुआ, तो मैं सोचती हूँ यही होगा। हाँ, अंत में बहुत चिल्लाना रोना भी होगा, लेकिन उसके बाद बहुत बहुत शांति होगी और उस अनुभव से नई स्थापना, नई रचना आरंभ होगी और अंत में भगवान के प्रति विश्वास की भावना भी जागृत होगी। तो उस वातावरण में शांति और भगवान के प्रति विश्वास, ये दो मुख्य विशेषताएं होंगी, फिर हम नई रचना का आरंभ करेंगे।
So quietness in the atmosphere and faith in God, I think these will be two main qualities by then we will start building from there.
Eric bhai, bahut dilchasp hai. Okay, main janta hu कि इस बारे में हम घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव करना भी, जिस भावना की आप बात कर रहे थे, वह हमें उसके करीब लेकर जाएगा। क्या आप हमें कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन का अनुभव करवा सकते हैं, जहां आप स्वर्णिम युग के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करें? मोहिनी बहन, कमेंट्री। इस समय मैं संपूर्ण चंद्रमा की ओर देख रही हूँ, उज्जवल, दीप्तिमान, जैसे कि वह खुशी से मुस्कुरा रहा है। आत्मा संपूर्ण प्रकाश युक्त है, कोई दाग धब्बा नहीं, जैसे कि संपूर्ण चंद्रमा। और इस अवस्था से बहुत बहुत गहरी शांति और संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। हर मनुष्य में इन सभी विशेषताओं का अनुभव होगा और यही सबके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि प्रकंपन बहुत हल्के, उमंग उत्साह से भरपूर और ये बहुत नैसर्गिक गुण होंगे। मित्रता, हल्कापन, प्रेम, ऐसे महसूसता होगी कि हम सब साथ साथ हैं, कोई बंटवारा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, मालिक है, हर बात के ऊपर नियंत्रण है। हर चीज बहुत प्यारी, सुंदर है, संपूर्णता की अवस्था, सतोगुणी अवस्था, संपूर्ण स्वतंत्रता। हवाओं में भी दिव्यता का अनुभव है, हर चीज प्राकृतिक, पालना करना, प्रचुरता, सहानुभूति, दयालुता, जैसे कि यह संपूर्ण समरसता है, संपूर्ण समन्वय, समझ, आपस में प्रेम से, दृष्टि से संवाद होगा। हम सबके साथ सब कुछ बिना बोले ही शेयर करेंगे। ओम शांति।
एवरीथिंग लवली, ब्यूटीफुल। Stage of perfection, Satguru stage. Total freedom. Divinity in the air also. Everything nurturing. sustaining abundance. Compassion, kindness, as if there is total harmony, understanding communication with love through Drishti. We will share everything even without speaking.
एरिक भाई, ओम शांति, शुक्रिया। ऐसा लगता है हीरे तुल्य युग से आपने हीरे जैसे विचार उत्पन्न किए हैं स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए। ये सदा ही रोमांचक होता है। अंत तक यात्रा करें ताकि समझ, स्मृतियां और भावनाओं को साझा कर सके, सभी तक बांट सके। बहुत बहुत शुक्रिया। यह बहुत रोचक था और सुंदर अनुभव था। बस अभी स्वर्णिम युग का इंतजार है। मोहिनी बहन, हाँ हम तैयार हैं। एरिक भाई, ओम शांति। सभी की ओर से ओम शांति।